मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठ रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठ रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मर्जी घड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, मारी जी बलड़ी ने भावे राधा नाम मलाई, वृष भानो की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, कन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर या तो याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर या तो याम, कठिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम।
कठिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम।
राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे।
मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे।
मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे,
मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे,
मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। सानंदमानंदवने वसंतम् आनंदकंदम हतपावनम् वाराणसी
काशीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये काशी विश्वनाथ भगवान
की जय
भागवत भगवान
की जय
व्यास जी महाराज
की जय
सुखदेव जी महाराज
की जय
प्रेमपुरी जी महाराज
की जय
सद्गुरुदेव भगवान
की जय
सब संतन की
जय
कृष्ण कन्हैयालाल
की जय
ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव
परात्पर पूर्ण ब्रह्म जगदाधार जगदीश्वर वह अव्यक्त परब्रह्म जिसका संकेत भगवान वेदव्यास जी करते हैं जन्माद्यस्यतः उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण और वो परब्रह्म जो सत्य स्वरूप है और सत्य परब्रह्म का हम लोग ध्यान करते हैं ऐसा बार बार हम लोग कहते हैं और सुनते हैं। उस परब्रह्म के अनंत स्वरूप है, अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं। उसमें से एक लीला जिसको हम लोग सुनना अत्यंत शुभ मानते हैं और हमारा मन उनको बार बार श्रवण करने का करता है, ऐसे जो सबसे पहले जिनका नाम भागवत महात्म्य में आया
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
भगवान श्री कृष्ण की लीला हम लोग बार बार श्रवण करते हैं। जगतपति होने पर भी भगवान भक्तवत्सल है, भगवान जो उसको पुकारता है उसका ऐसी रक्षा करते हैं और भगवान की पांडवों की स्थान स्थान पर जगह जगह पर रक्षा की है ऐसे हम लोग सुनते आए हैं। महाभारत में विस्तार से उसका वर्णन किया है। युधिष्ठिर महाराज ने जो राजस्व यज्ञ किया था भगवान यश मांगने वाले को देते हैं और जो भक्त होते हैं उनको भक्त वत्सल रूप से अनायास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों को राजसूय यज्ञ में राजसूय यज्ञ को संपूर्ण करा करके उनके यश और कीर्ति को फैलाया। 5000 से ऊपर वर्ष हो गए और आज तक हम लोग उस कीर्ति को बार बार गाते हैं। कई कारण होते हैं भगवान के लीलाओं का। भगवान की एक लीला है कि उन्होंने अपने उनके जो दो सेवक है जय और विजय उनका उद्धार करना है। उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने एक का उद्धार किया, किसका? शिशुपाल का। शिशुपाल था जो जय विजय बने थे, पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वो भी कथा बीच में आई भगवान श्री राम बन करके दशानन रावण और कुंभकर्ण का भी उन्होंने उद्धार किया। अब तीसरा जन्म शेष था जिसके बाद में पुनः उनको वो पद प्राप्त होना था। सेवक कभी कभी अपराध करते हैं स्वामी के लिए, जो सेवक अपराध करते हैं ना, आप उनको निर्देश देते कि किसी को अंदर नहीं आने देना, उनका क्या दोष। और कभी कभी उन पर कुपित होते हैं जो आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले सेवक नहीं होते ना, वो भी कहीं ना कहीं के स्वामी होते हैं, है ना। जो बड़े आदमी से कोई मिलने आया होगा तो साधारण व्यक्ति आएगा, वो भी कहीं ना कहीं का स्वामी होगा, और उन सेवक ऊपर कुपित होते हैं। और संत होते हैं, संतों को तो कहीं भगवान के पास जाना होता है, तो परंतु वहां पर वो सेवक व्यवधान रूप बने थे और इसलिए संतों ने उनको श्राप दिया था। तुम वैकुंठ में रहते हुए, वैकुंठ तो वहां पर कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ का मतलब जहां पर कोई कुंठा नहीं है, किसी प्रकार का मन में कोई भेद नहीं, कुंठा नहीं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, वो वैकुंठ है। और वहां पर इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का व्यवहार उन संतों को इतना पसंद नहीं आया, इसलिए इनको श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद में उनको निराकरण भी हुआ, भगवान ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। वो सेवक होता है, सेवक से अपराध होने पर भी उसको क्षमा करना और उसको फिर से अपने पास रखना, वो महत्वपूर्ण वो स्वामी होता है। और वैसे हमारे भगवान है, उनसे बढ़कर के कोई स्वामित्व निभाता नहीं है। शिशुपाल का उद्धार हुआ है, वो उनके भीतर समा गया है और भगवान विचार करते हैं कि और एक शेष कार्य बचा है। भगवान का जो अवतारीय कार्य है अब एक शेष बचा है, कौन सा कार्य बचा है? अब एक दंतवक्त्र नाम का, दंतवक्त्र एक प्रधान सेवक अभी वो जीवित है, वो भी राक्षस कुल में है। और भगवान इंद्रप्रस्थ से जब वापस जाने लगते हैं द्वारका, तो कहते हैं कि कुछ कार्य करते हुए जाना चाहिए। ग्रामम गच्छति तृणम स्पर्शति, जैसे हम लोग जब जाते हैं ना पहले, आजकल तो कहां गांव में जाते हैं लोग, पहले के लोग गांव में जाते थे और गांव में जाते हुए वो जो बीच में घास होती है ना उसको छूते हुए जाते थे, स्पर्श करते हुए, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। भगवान इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, भगवान ने अपने जो भक्त थे उनका कार्य पूर्ण किया और जा रहे हैं अपने नगर की ओर जा रहे हैं, द्वारका की ओर जा रहे हैं। जैसे वो कहावत है, ग्रामम गच्छति तृणम स्पर्शति, गांव में जाते हुए जैसे वो घास को हाथ लगाते हुए जाते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे हैं। और कुछ शेष कार्य हैं, शिशुपाल का मित्र, शिशुपालस्य शाल्वस्य पौंडकः शापि दुर्मतिः। शिशुपाल है, शाल्व है, पौंडक है, उनको परलोक पहुंचाने के बाद में उनका जो मित्र था जिसका नाम दंतवक्र था, उसको बड़ा क्रोध आया भगवान कृष्ण पर। और उसके पास एक गदा थी, वो गदा लेकर के वो अकेला ही भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए गया। और भगवान ने भी देखा कि हमारा ये अंतिम सेवक आ रहा है, इसका उद्धार करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न हो कि बिना लड़े ही उसको मारूं मैं। भगवान बड़े दयालु है। और क्रोधवशात वो दंतवक्र, उसने बड़ी भारी गदा लाई थी और भगवान के वक्ष पर उसने दे मारी। भगवान वहां पर कोई उनको कुछ नहीं हुआ, परंतु भगवान ने विचार किया कि इसका उद्धार करना है। भगवान के पास में कौमुदी नाम की गदा है, चक्र तो यहां चक्र का प्रयोग नहीं किया, सब उनके शस्त्र हैं, उनको अलग अलग उसका उपयोग करते हैं। यहां उनके पास कौमुदी नाम की गदा है, उस गदा को भगवान ने उस दंतवक्र के वक्ष पर दे मारा और वहां पर उसके प्राण पखेरे उड़ गए और वहां से एक ज्योति निकली।
ततः सूक्ष्मतम ज्योति,
वहां पर एक सूक्ष्म ज्योति निकली और ज्योति निकल के
पश्यताम सर्वभूतानाम यथा चैद्य वधे नृपः,
जैसे चैद नरेश शिशुपाल की जैसी ज्योति निकली थी उसी प्रकार से जो दंत वक्र था उसकी वहां से ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई, भगवान में वो समा गई और उसका तीसरा जन्म जो था राक्षस का वो संपन्न हुआ और भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार का भगवान कार्य करते करते और भगवान ने अब निश्चय किया कि मेरा अवतारीय कार्य पूर्ण हो गया है। भगवान अवतार लेते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, हमारे और आपके जैसे कर्म के बंधन से बंध करके नहीं आते भगवान। भगवान मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इसमें अकर्ता हूं, भगवान की सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को वो कर्तापन से काम नहीं करता है। भगवान का कार्य होता है अकर्ता होकर के, अलिप्त होकर के। पद्म पत्र विमाम भता, इस प्रकार का भगवान का कार्य था और भगवान ने अभिधान करके मेरा जो कार्य था वो संपन्न हो गया है और भगवान ने अश्व त्याग दिए और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अब लोगों ने कई बार सुना होगा महाभारत में जब दुर्योधन और अर्जुन आमंत्रण देने गए थे उस समय भगवान ने कहा था कि मैं अब शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान का कार्य पूर्ण हुआ और अनेक अनेक प्रकार की यहां पर कथा कहते हुए राजा पूछते हैं कि हे भगवान सुखदेव जी महाराज, भगवान यानि यानि चान्नानि, थोड़ा काल करो, मुकुंदस्य महात्मनः, उनकी कथाओं को मैं और श्रवण करना चाहता हूं, जो जो कथाएं हुई है उनको और मैं श्रवण करना चाहता हूं। भगवान एक सुंदर वहां पर सुखदेव जी महाराज एक सुंदर कथा यहां पर प्रस्तुत करते हैं, आप लोगों ने कई बार उसको सुना होगा।
कृष्णश्चासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
आप लोगों ने कई बार इस कथा को श्रवण किया होगा और इस कथा को श्रवण करने के बाद में भीतर एक प्रकार का हमारे हृदय में द्रव निर्माण होता है, हमारा हृदय द्रवित होता है और उसका प्रवाह अश्रुओं से होता है। यहां इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको कथा श्रवण करनी है और फिर भी कोई उसमें द्रवित होना चाहता है तो कोई बात नहीं है। उस ब्राह्मण का यहां पर वर्णन करते हैं वो कैसा है। एक तो भगवान का सखा है,
श्रवणम कीर्तनम विष्टोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम।
भगवान की भक्ति करते हुए साक्ष्य भाव, सखा भाव अपने को रखना चाहिए। और भगवान के क्या है, वो जो भगवान के भगवान श्री कृष्ण के वो ब्राह्मण सखा है। ये कब ये सप्तम अष्टम भक्ति, फिर उसके बाद में आत्मनिवेदन है। जब साक्ष्य भाव हो जाए तो फिर वहां पर भेद नहीं रहता है। जो दो मित्र होते हैं अगर वो सही मित्र हैं, निष्पाप हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है। यहां पर वो सखा है और सखा के साथ साथ विरक्त है, विरक्त के साथ में इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, उनकी इंद्रिया मन वाचा कर्म उनके अधीन है। ऐसे जितेन्द्रिय जो ब्राह्मण है और वो कहते हैं कि वो गृहस्थी है, वो कोई सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थी है। और ग्रस्ती होने पर उनका ग्रस्ताश्रम चल रहा है और वो कहते हैं कि उनकी जो है प्रतिव्रता एताम प्राह, उनकी पतिव्रता श्री है और वो भी उनके समान जैसे उनका आचरण है उसी प्रकार उनके साथ में रहना, उनके साथ सेवा करना, उनके साथ भगवत भक्ति करना, जैसे देहूति ने अपने पति की थी विश्रम्भेन आत्मसौचेन। आप लोगों ने सुना विश्वासपूर्वक, परंतु कभी कभी जो प्रकृति है ना, ये कभी कभी परीक्षा लेती है और उस समय परीक्षा लेते लेते उनके कुछ बालक हुए थे और बालक उन्होंने विचार किया और उनके पत्नी ने विचार किया कि हम लोग तो भूखे रह के चल जाएगा लेकिन हमारे छोटे छोटे बालक भूखे हैं, उनकी पीड़ा नहीं सहन कर देती है। जब वो भूख से बोलते हैं कि भैया भोजन, मैया उस समय कुछ भी उनको खिला पिला करके सुला देती, परंतु कब तक चलेगा। जब वो बच्चे भी पीड़ित होने लगे भूख से तो एक दिन निवेदन किया, उन्होंने कहा कि भगवान हमने सुना है ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रीयत पति ही ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतः वर्षव। बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि आपके जो ब्रह्म है सखा है लक्ष्मीपति है वो आपके सखा है, ऐसा हमने सुना है कि आप क्यों नहीं जाते हैं उनके पास में, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ आप ले आएंगे तो ठीक होगा। एक ने कही दूजे ने मानी विश्रम्भेन आत्मसौचेन, लगा कि एक पंथ दो काज हो जाएगा। जैसे हमारी भार्या कह रही है, हमारी पत्नी कह रही है, उसको भी मान मिलेगा कि मैंने उनकी बात सुनी और बहुत समय हो गया मैंने जगतपति जो परब्रह्म है जो इस समय वर्तमान में वो द्वारकाधीश है उनका दर्शन नहीं किया है, तो एक पन दो काज हो जाएंगे तो मैं दर्शन के लिए निकलता हूं। सुदामा जी के भाव प्रकट हो गए, केवल कुछ मांगने के लिए नहीं, याचना के लिए नहीं, याचना तो केवल निमित्त है परंतु उस बहाने से उस माध्यम से मुझे द्वारकाधीश का दर्शन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि हे देवी मैं तो चला तो जाऊं परंतु गुरु के पास भगवान के पास श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में जाने के जाते समय उनको कुछ भेंट देनी थी, अपने घर में है कुछ। उनकी भार्या कहती है कि अगर होता तो आपको मैं क्यों कहती, अगर कुछ होता तो आपको मैं क्यों कहती कि आप वहां से जाके ले आओ, उसी से हम काम चला लेते हैं। और तब तक उनकी जो पत्नी थी साध्वी ने कहा कि अब अपने पास भी कुछ नहीं है तो भगवान के लिए तो चाहिए ना, तो चलो पड़ोसियों के पास चलते हैं, किसी के पास तो कुछ मिलेगा। बाद में निकलती है और निकल करके पड़ोस में जाती है, हे देवी मेरे पतिदेव द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है परंतु कुछ उनको भेंट देने के लिए कुछ आप अगर हो तो दे देना। वहां से कहते हैं कि दो तीन मुट्ठी तंडुल ले आए, जिसको पोवा बोलते हैं, यहां पर तंडुल लिखा है, तंडुल ले आए। और उसको कहा किस में ले जाना, उनके पास तो कोई पात्र तो था नहीं, तो पुराना सा कपड़ा पड़ा हुआ था उसमें वो दो तीन गांठों में उसको बांध लिया और सुदामा जी ने उसको लेकर के चल दिए। कहां पर भगवान का नाम स्मरण करते हुए, कहां चलते हैं भगवान का नाम लेते हुए वो चल रहे हैं, द्वारकाधीश का दर्शन हो जाएगा। मन में उत्साह है आज, यद्यपि शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, चलने की शक्ति नहीं है, परंतु आज उत्साह अंदर से अंदर से उत्साह पैदा हुआ है और आज वहां से चल देते हैं कि आज मुझे दर्शन होगा हमारे सखा और द्वारकाधीश का, और धीरे धीरे वो प्रस्थान करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि कैसे पहुंचे होंगे, परंतु भगवान ने एक वहां का माया के द्वारा उनको ऐसे नजदीक बुला लिया और तुरंत वहां पर पहुंच गए, द्वार पर पहुंचे। देखते हैं कि यहां पर बड़े बड़े महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, स्वर्ण के महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। और उस समय देखा और उन्होंने कहा कि यही द्वारका है। वहां पर कुछ द्वारपाल थे, उन्होंने कहा कि यही द्वारका है। उन द्वारपालों ने कहा कि हाँ, द्वारका तो यही है। एक बार देखने के बाद लगता था कि इतना कृष्ण का है, उनके वस्त्र, उनका शरीर इस प्रकार का था, जो देखते ही लगता था कि कौन आए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि किस लिए आए हो यहाँ पर। सुदामा जी ने कहा कि मुझे तो भगवान कृष्ण से मिलना है। और भगवान कृष्ण भी जानते थे कि मेरा सखा, मेरा भक्त आज मेरे दर्शन के लिए आ रहा है और मैं उसका दर्शन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मेरा सखा मेरे द्वार पर आया है, और भगवान सखा के अपने भगवान श्री कृष्ण अपने सखा को मिलने के लिए द्वार तक दौड़े दौड़े आते हैं और सखा को अपने आलिंगन में बांधते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं। भगवान अपने साथ में ले जाते हैं और वहां पर महल में सुंदर स्वर्ण का वहां पर आसन बना हुआ है और स्वयं जहां पर भगवान बैठते थे और वहां पर उनको विराजमान कर दिया। ये भगवान भक्त चाहे कैसा भी निर्धन हो, धनी हो, उसकी कोई नहीं, उसका जो ध्येय है, उसका स्वभाव है और उसका जो समर्पण कैसे है। भगवान ने अपने आसन पर बिठा दिया, आसन पर बिठा देखने के बाद में अब दूर से चले आ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी कलश ले आओ। गंगा जल ले आए, स्वर्ण कलश में वहां पर अपने आसन पर बिठाया है और अपने आसन पर बिठा करके भगवान ने वहां पर उनका अभिषेक शुरू किया है। चरणामृत चरण का उनका अभिषेक शुरू किया है और भगवान वहां पर अपने स्वयं उस ब्राह्मण के चरणों का अभिषेक करते हैं। और वहां पर सब देवियां खड़ी है, देख रहे हैं कि ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आया है, जिसके न कपड़े का ठिकाना है न उसका शरीर का ठिकाना है, परंतु हमारे साक्षात देवादिदेव ये द्वारकाधीश उस ब्राह्मण का अभिषेक कर रहे हैं। और भगवान वहां पर कहते हैं कि अभिषेक करते करते उनके जब चरणों को छू रहे थे, उसमें कुछ कांटे गड़े हुए थे, अपने हाथों से वो कांटों को निकाल रहे थे और धीरे धीरे उसको उसका स्पर्श करते हुए भगवान उनके चरणों को वहां पर सहला रहे थे। और धीरे धीरे वहां पर जल छूट रहा था, वहां पर लक्ष्मी जी साक्षात लक्ष्मी उनको वहां पर जल चढ़ा रही थी। और इस प्रकार भगवान के वहां पर ऐसे हमारे मित्र, ऐसे सखा, उनकी दशा उनके आश्रुओं से आश्रुपात होने लगे और भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया है। और चरण प्रक्षालन करने के बाद में उनके चरणामृत लेकर के अपने मस्तक पर धारण किया और फिर सुंदर वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया कि आप सुंदर वस्त्र पहने। और वस्त्र पहनाने के बाद में फिर एक पलंग पर बैठ गए जहां पर साक्षात प्रभु विराजमान होते हैं, जहां पर साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती है, वहां पर अपने पलंग पर बिठा दिया। और पलंग पर बिठा करके दोनों की चर्चा प्रारंभ हुई। ये सखा, आपने विवाह तो किया होगा और विवाह करने के बाद में आपके कुछ पुत्र भी होंगे, भगवान को सब पता है, फिर भी पूछना तो है ना। और ये जो सुदामा जी हैं, मैंने पहले कहा था गर्गाचार्य जी की एक पुत्री है जो बड़ी विद्वान है और वो चाहती थी कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जिसके पास धन न हो, विरक्त हो, परमात्मा का भक्त हो। और गर्गाचार्य जी तो बड़े धनवान थे, वो धन देख देख करके वो वहां पर वो संतुष्ट हो गई थी। और उसने विवाह किया था सुदामा जी के साथ में, उसका नाम कौमुदी था। एक किसी बहुत सुंदर कवि ग्रंथ लिखा है कौमुदी, विद्वान ब्राह्मण की कन्या, और वहां पर वो उनके साथ में विवाह हुआ है। और धीरे धीरे चर्चा चली है और चर्चा चलते चलते फिर भगवान ने वो चर्चा ताल तान छेड़ दी, जो अतीत था, अतीत में जो घटनाएं घटी थी, सखा तो वहां बने थे जहां पर गुरुकुल था, संदीपनी के आश्रम में ये वो सबसे उत्तम गुरुकुल था उस समय, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी और सुदामा जी भी वहां पर, एक तो आए थे राज्यकुल से, एक आए थे साक्षात परमात्मा, और एक थे साक्षात परमात्मा के परम भक्त, दोनों का वहां पर संगम हुआ था और मित्रता हुई। मित्रता वही होती है जहां पर समानता होती है, और समानता पैसे में नहीं होती है, समानता गुणों की होती है। कितने बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, अगर आपको उनके साथ में आपका मन नहीं मिलता है तो आप उसके द्वार पर ढाकेंगे तक नहीं, और अगर आपको समानता मिलती है, अगर छोटा सा छोटा अगर आपका नौकर भी है उसके घर में जाकर के आपसे मिलके आ सकते हैं, आपका मन उसको उनके साथ में मिलना चाहिए, और वहां पर दोनों का मन एक साथ में मिला हुआ था। किस भाव से? एक परम जो परम ब्रह्म परमात्मा, और उस परमात्मा को प्राप्त किए हुए ऐसे विद्वान, उसमें भेद नहीं है, जो ब्रह्म है और ब्रह्मविद है उसके अंदर कोई भेद नहीं है, केवल ऊपर का आवरण होता है उसका भेद हो सकता है, दो चीज अलग अलग दिख सकती है परंतु वो भीतर से कोई भेद नहीं होता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर मित्रता हुई, और मित्रता होने के बाद में वो दोनों साथ में रहने लगे गुरुकुल में। भगवान कृष्ण के और भी वहां पर बड़े बड़े घर से कुल से आए होंगे, भगवान ने और लोगों से मित्रता नहीं की, अगर मित्रता हुई है तो सुदामा जी से मित्रता हुई है, और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्या वो क्या दिन थे, और आपको वो ये याद है वो घटना, एक बार गुरु मैया ने हम लोगों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था, और हम लोगों ने वन में लकड़ी इकट्ठा की थी और बड़े बड़े दो बोझे बनाए थे, एक आपको लेना था और एक मुझे लेना था, और आपने वो जो बोझ है एक मेरे सिर पर आपने रख दिया, और मैंने वो बोझ आपके एक सर पर, आपके सर पर एक बोझ मैंने रख दिया, और हम लोग जैसे वहां से चलने वाले थे, जैसे यहां पर दो दिन पहले वर्षा शुरू हुई ना, हुई ना, वैसे उस समय घनघोर वर्षा होने लगी, घनघोर, इतनी घनघोर वर्षा कि सब जगह जल ही जल, सब जगह जल ही जल, अब रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा छा गया, अब क्या करें, कहां जाए, तो हम लोगों ने विचार किया कि चलो यहीं पर कहीं रहते हैं, और हम लोगों ने वो जो भार था, वो जो लकड़ी थी वो नीचे रख करके हम लोग एक वृक्ष पर चढ़ गए, और वृक्ष पर चढ़ करके, और फिर एक डाली पर आप बैठे थे और एक डाली पर मैं बैठा था, परंतु ऐसा न हो कि रात को हम लोगों को नींद लग जाए और हम कहीं नीचे गिरे, तो बार बार कभी कभी आपको जब नींद आती तो मैं चिकुटी काटता, और जब मुझे नींद आती तो आप मुझे चिकुटी काटते, कि सावधान, सत्संग में भी कभी कोई सोता है ना बाजू वाला, तो सत्संग उसको धीरे से बोलता है बहन, क्योंकि जागते रहना, अगर सोया सो खोया, पता नहीं क्या कौन सी घड़ी आ जाए, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप और हम वहां पर बैठ करके रात्रि भर हम लोगों ने वहां पर निकाली, और एक दूसरे को हम लोग जगाते रहे, प्रातः काल हुई, और प्रातः काल होते ही वो सब तूफान छट गया था, वर्षा रुक गई थी, और हम लोग नीचे उतरे और देखा तो इतना वजन हो गया उस लकड़ियों का, हम लोग उठा नहीं पा रहे थे, तब तक आवाज आई, हे कृष्ण, हे सुदामा, तुम कहाँ हो, हमारे गुरुदेव हम लोगों को खोजते खोजते आ गए। ये गुरुदेव होते हैं जो शिष्य का रक्षण करते हैं। आप लोगों को भी शायद कभी अनुभव हुआ होगा, परंतु अनेक बार उसका हमने अनुभव किया अपने जीवन में, गुरु गुरु होता है, जो गुरुदेव होते हैं, हमारा संपूर्ण रक्षण, हमारे शरीर का रक्षण, हमारे सम्मान का रक्षण, हमारे आत्मा का रक्षण अगर कोई कर सकता है वो केवल गुरुदेव होता है। बहुत बार उसका अनुभव हो चुका है, गुरुदेव पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हे सुदामा, कहां हो? हम लोगों को दूर से आवाज आई, हे गुरुदेव, हम लोग तो यहां हैं। गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव ने हमारे दोनों ही बोझ अपने कंधे पर ले लिए और गुरुदेव वापस चलते हैं और वहां पे वहां अपने गुरुकुल में जाते हैं। और उस समय हम लोगों को स्मरण है, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, जब अतीत हो जाता है, अतीत भी वो बीत जाता है, वो सुखकारक लगती है। आप भी अनुभव करना कभी, आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो, उस कष्ट का वर्तमान में आनंद मिलता है स्मरण करते हुए। भगवान वो स्मरण कर रहे हैं और इस प्रकार स्मरण करते करते बहुत देर हो गई और बहुत देर होने के बाद में भगवान ने कहा कि आप तो मर्मज्ञ हैं शास्त्र के। सुदामा जी शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, संयमी हैं। भगवान ने कहा तो आप जब चले होंगे तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो आपने वहां से भेंट लाई होगी। अब सुदामा जी ने देखा कि इतना बड़ा वैभव, यहां पर सोने चांदी से कम का कुछ है ही नहीं, हीरे मोती जवाहरात, तो यहां की जो अट्टालिकाएं हैं वो साक्षात उस समय बनी हुई है, उस समय स्फटिक की बनी हुई है, रत्नों से वहां पर झालर बनी हुई है इस प्रकार, और यहां पर मैं अपने ये तंडुल इनको मैं प्रदान करूं, उसको छुपाते रहे। यहां पर भागवत में उसका उल्लेख है, उसको छुपाते रहे और छुपाते छुपाते उन्होंने देखा तो ये छुपा रहे, संकोच कर रहे हमारे भक्त। भगवान ने झट से वहां पर छुपा रहे थे वो पोटली खींची और पोटली खींच कर पोटली खोली और उसको गप से ऐसे खा गए जैसे बच्चे होते हैं ना, जो भूखे बच्चे वो कुछ भी खा लेते हैं, वैसे गप से खा लिए और वो दृष्टि पड़ी वहां पर रुक्मिणी जी की। कहा कि सुदामा जी आपने ये जो तंदूर लाए हैं मुझे बड़ा उसका स्वाद आ रहा है, और जो मुझे भक्त बड़ा प्रेम से, भगवान ने गीता में भी कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्त्युपरत मस्तामि प्रेतात्मनः। यहां भी वही की वही श्लोक यहां पर भी आया है श्रीमद् भागवत में, चाहे कोई पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करे, मैं बहुत प्रेम से उसको ग्रहण करता हूं। आपने भी ये जो तंदूर लाया है इससे तो आज तक तो ऐसा मैंने कभी भोजन पाया ही नहीं, जो प्रेम से किया जाए कराया जाए वो होता है भोजन। हम लोग अभिमान पूर्वक अहंकार पूर्वक 56 भोग लगाते हैं, भगवान कितना उसको पसंद करते होंगे। हमारे सखे सगा संबंधी हमारे मित्र वो देखे कि ये कितना बड़ा आदमी है, उसने कितने 56 भोग लगाए हैं और उसमें कितना खर्चा किया है, भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। परंतु जो प्रेम पूर्वक अगर भगवान को हम कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र हो चाहे वो पुष्प हो, गजेंद्र ने क्या किया था, एक पुष्प तोड़ करके भगवान ने उसके नाम से भेजा, जो इस योनि बीज है जिसे जो संसार का जो है निर्माता है, जो संसार का कारण है, उसके नाम से खाली यहां से दिखाया और भगवान वहां पर आकर के उसको ग्रहण करते हैं। भगवान ने कहा कि इतना मैंने तो ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं, तब तक भगवती ने देखा रुक्मिणी जी ने कि ऐसा न हो कि अब ये संपूर्ण ऐश्वर्य तो वहां पर चला गया परंतु मुझे तो भगवान के साथ ही रहना है, मुझे तो भगवान के साथ में रहना है, मुझे कहीं अन्यत्र जाना नहीं है। इसलिए दूसरा जैसे ही ग्रास ले रहे थे उसी समय रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, भगवान कहा अकेले खा जाओगे कुछ हमारे लिए भी नहीं छोड़ोगे। भगवान समझ गए और वहाँ पर भगवान ने उसको और भी चिंतन करते हुए और उनकी चर्चा करते हुए अनेक प्रकार की वहाँ पर चर्चा हुई है और रात्रि बीत गई, विश्राम हो गया और संत लोग अपने वस्त्र धो करके दूसरे पहनते, पहले स्नान कर किया, स्नान करने के बाद में भगवान ने उनको पीताम्बर दिया और प्रातः काल हुई, जो वस्त्र सुखाए थे ना, अब शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, जो सुखाए हुए वस्त्र थे वो शुद्ध थे और पीताम्बर वाले वस्त्र पूर्वक वो स्नान किए, उसको गीला कर दिया और जो रात्रि को जो सुखाए थे उनके अपने वस्त्र वो फिर से धारण के लिए कर लिए सुदामा जी ने और कहा कि भगवान आपका दर्शन हुआ तो मैं चलूं। भगवान को पता था कि हमने क्या किया है, तो संकोच, कुछ मांगने का मन नहीं कर रहा था। भगवान ने, सुदामा जी ने कहा कि मैं इनसे क्या मांगू, ये तो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, संकोच के कारण कुछ न बोल सके, अपने वस्त्र पहन लिए और जैसे आज दर्शन हो गया, इससे बढ़कर के हमारे लिए क्या हो सकता है, इतना सुंदर हमारे लिए अवसर प्राप्त हुआ और भगवान का दर्शन करके भगवान ने कहा कि पधारे, आपने आकर के मेरे वैभव को और भी उसको अपने शोभायमान कर दिया, आपने आकर के मेरे अंतकरण को प्रफुल्लित कर दिया, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं जब अपने भक्त से मैं मिलता हूं तो मुझे सबसे अति आनंद होता है, आपसे मिलकर के आनंद हुआ और वो भगवान का भजन करते 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 सुदामा जी अपने जो नगर है वहां पर जाते हैं, जैसे आए थे वैसे सुदामा जी अपने नगर तक पहुंचते हैं और नगर पर पहुंच करके देखा कि जिस रास्ते से मैं आया था वहां तो ये गांव तो था नहीं, बड़े सुंदर सुंदर वहां पर भवन, बड़े सुंदर सुंदर वहां पर मंदिर, बड़ी सुंदर सुंदर वहां पर सड़कें, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए हैं और सब लोग बाहर आते हैं और सुदामा जी का स्वागत करते हैं और सुदामा जी का स्वागत करते हुए और तब तक उनकी पत्नी को भी पता लगता है कि सुदामा जी वापस आ रहे हैं और वो भी थाली में दीपक लगा करके सुदामा जी की आरती करने के लिए आती है। ये पूछते हैं कि तुम देवी कौन हो, कहा कि मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी, मेरा नाम ये है। अरे ये कैसे हुआ, बोले आप गए और उसके बाद में यहाँ पर तो ये वैभव अनायासी यहाँ पर प्रकट हुआ और ये सब उस परमात्मा की दया है। सुदामा जी ने विचार किया कि भगवान कितने दयालु हैं और जिसके पास में ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो विरक्त, जो ज्ञानी के ऐश्वर्य आने के बाद में उसके अंदर अभिमान नहीं आता है, ऐसा सुदामा जी को लगा था कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, इसलिए शायद नहीं दिया होगा कि मुझे अभिमान न आ जाए, परंतु वही बात आकर के देखा तो यहाँ पर संपूर्ण वैभव आया है परंतु सुदामा जी में ऋष मात्र भी अभिमान नहीं आया कि ये मुझे ये मेरा ऐश्वर्य है और जितनी देर भक्ति करते थे उससे ज्यादा भगवान का भजन करने लगे। और हम भी जब सुदामा जी भजन करते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा, हम लोग भी सुदामा जी का भजन हम लोग भी करते थोड़ा।
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने कथा ये बस नसीबा गया है, मिलने कथा बस नसीबा गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समाते करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा। ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे, గోవిందము బాలు ముకుందము పరమానందం హరే హరే అది గోవిందం బాల ముకుందం పరమానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలుముకుందం 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 పరమానందం హరే హరే
పరమానందం హరే హరే పరమానందం హరే హరే బ్రహ్మానందం హరే హరే బ్రహ్మానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం హరే హరే భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం హరే
పరమానందం హరే హరే
పరమానందం హరే హరే
బ్రహ్మానందం హరే హరే
బ్రహ్మానందం హరే హరే
భజ గోవిందం బాలముకుందం పరమానందం 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 హరే హరే
सुदामा जी को भगवान के समान वैभव प्राप्त हुआ, परंतु उनको अहंकार मद या जो धन है उसका कभी अभिमान नहीं हुआ। इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या, यहां पर सुखदेव जी मानत करते हैं कि किस प्रकार दृढ़ निश्चय हुआ। ऐसी जब बात होती है तो भक्त का दृढ़ निश्चय होता है। भक्तोति व जनार्दने, जनार्दन में भगवान में उनकी भक्ति हो गई और सभी विषयों को त्याग करके भगवान के भजन में लग गए हैं। यही भगवतीय कार्य है। जब अपना कर्तव्य समाप्त हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कर्तव्य को छोड़ के नहीं, कर्तव्य पूर्ण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान का भी कुछ कार्य है, उस कार्य के लिए भगवान आते हैं। और भगवान अब एकदा द्वारवत्यान वसतो राम कृष्णयो, एक बार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वारका में विराजमान थे, वहां पर उनका वास था। और उसी समय सूर्योपरागमहान आसीत कल्पक्षये यथा, उस समय सूर्य ग्रहण लगने वाला था, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और भगवान ने सबको प्रेरणा दी कि सूर्य ग्रहण करना चाहिए ब्रह्म सरोवर पर। और ब्रह्म सरोवर है कहा कुरुक्षेत्र में। और भगवान को यह भी पता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से अंबाजी आए थे देखने के लिए मुझे कहां रास्ता है, कहां जाना है, कहां द्वारका बसानी है, वो रास्ते पर आए थे। और भगवान ने सबको प्रेरणा दी कि अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण में ब्रह्म सरोवर में जाकर के स्नान करने का बहुत फल होता है। उनको पता था कि वहां पर मुझे 18 दिन तक रहना है। वहां पर सर्दियों के दिनों में वहां पर 18 दिन तक रहना है और ऐसे क्षेत्र में रहना है जहां पर कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, वहां पर केवल प्रतिदिन वहां विद्ध भूमि बनने वाली है। और सबको वहां पर प्रेरणा दी और सबको कहा कि चलो, सब लोगों ने अपने अपने रथ सजाए हैं, सभी रानियां हैं और सब वसुदेव जी देवकी उग्रसेन महाराज सबके सब प्रस्थान करते हैं और केवल वहां पर पुण्य कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं। भगवान का जो उद्देश्य है वो केवल अपने को दिखता है कि यहां पर किसी उद्देश्य जा रहे हैं, परंतु आंतरिक और भी उद्देश्य होते हैं। भगवान किस लिए जा रहे हैं तो भगवान को पता है कि वहां पर हमारे अनेक कार्य करने हैं, तो भगवान ने सबको प्रेरणा दी कि चलो हम लोगों को ब्रह्म स्वरूप पर जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है, और सबके सब लोग कुरुक्षेत्र के लिए और प्रस्थान करते हैं। और नंद बाबा को ही पता लगता है कि हमारे भगवान कृष्ण अब धीरे धीरे हमारा पुत्र है, ये नहीं पूर्ण परब्रह्म है। अब पुत्र का जो संबंध था वो साक्षात परब्रह्म है, और वो तो अब इस समय द्वारकाधीश है, वो भी वहां पर आने वाले हैं। संदेश प्राप्त हुआ और वहां से नंद बाबा, यशोदा मैया और अनेक गोपिकाएं वहां पर प्रस्थान करती है, कहां कुरुक्षेत्र की ओर। इसी माध्यम से पुनः एक बार भगवान से हमारा मिलन होगा, भगवान से भगवान की प्राप्ति होगी, और सबके सब वहां पर आए हैं। भगवान को यशोदा मैया ने अपने हृदय से लगाया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा के चरण स्पर्श किए हैं, और सब एक दूसरे से मिले हैं। और वहां पर कुछ गोपिकाएं जो आई थी वो दूर से देख रही थी भगवान को, वो पास में जाएंगे तो शायद उनको संकोच होगा। हमारा भक्त ऐसा होना चाहिए कि हमारे कारण उनके किसी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उनके सम्मान में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम वहां पर जाएंगे, हम तो ये ग्वारन हम लोग गांव से आए हैं, और उनके साथ में पट्ट रानी आया है, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा है, जामुअंती है, अनेक अनेक आठ पट्ट रानी और भी है वहां पर जो बैठे हुए हैं, तो दूर से बैठी है, दूर से देख रही है, निहार रही है कि वही हमारे लाला है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान ने देखा कि अब वो तो यहां पर आने वाले नहीं है, अब हमें ही वहां पर जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण वहां से धीरे से निकलते हैं और जहां पर गोपिकाएं बैठी हुई है वहां पर जाते हैं और उनसे अपनी बात कहते हैं कि हे देवियों, जैसे तुम मेरा स्मरण करते थे उससे ज्यादा मैं तुम्हारा स्मरण करता था, कभी मैं भूल नहीं पाया हूं। किस प्रकार का भगवान ने उनको जाकर के सांत्वना दी, और सांत्वना देने के पश्चात उनको कहते हैं कि मैं उनको जाकर के उनका साक्षात दर्शन कराया, और साक्षात दर्शन कराने के बाद में आत्म शिक्षिया गोप्य, यहां पर सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, उनको भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया? ये तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर का अभिमान छोड़ दो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम क्या हो? तुम स्वयं परमात्मा हो, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे हृदय की ग्रंथि का भेदन ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि हम उसका अभिमान करते हैं, और वो हमारा जो स्थूल शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये जीवात्मा निरंतर भ्रमण करती रहती है। भगवान ने कहा कि इनका जन्म मृत्यु से तो ये परे हो गई है, इसलिए उनके जो सूक्ष्म शरीर है, उनका जो कारण शरीर है, उपदेश के बाद में उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और उनको अपना निज स्वरूप दे दिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। और इस प्रकार भगवान का आगे चरित्र चल रहा है, और भगवान आगे चल रहे वहां पर एक बार देवकी माता ने उनसे जिज्ञासा की कि भगवान, हमने सुना कि आप जब गुरुकुल में गए थे, और गुरुकुल में जब आप गुरु दक्षिणा देनी थी उस समय आपने उनके गुरुपुत्रों को लाके दिया था, मेरी भी इच्छा हो रही कि मेरे भी छह पुत्र मारे गए थे उनको मैं देख पाऊं। भगवान ने विचार किया कि इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने उस समय सुतल की यात्रा की है, मैंने पहले कहा था ना कि भगवान सभी लोगों की यात्रा कर रहे हैं। सुतल की यात्रा की और वहां पर बलिदेव के यहां पर, बलि राजा के यहां पर भगवान आए हैं, उन्होंने उनका पूजन किया, सेवा की। भगवान आप यहां पर कैसे? भगवान ने कहा कि हे बलि राजा, तुम्हारे यहां पर मेरे 6 भाई हैं, किसी कारण से ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था तुम राक्षस बनोगे, इसलिए राक्षस बने, उसके बाद में हमारे मां के उदर में आए, उनकी मृत्यु हुई, परंतु ये आपके पास में सुरक्षित है, इसलिए उनको आप मुझे लौटा दो। और उन्होंने उन 6 भाइयों को लाया और अपने मां देवकी को वहां पर कहा कि ये तुम्हारे 6 के 6 पुत्र हैं। मातृवत वात्सल्य हुआ और उनके बाद में वो अपने स्वधाम पहुंच गए। और इसके पश्चात सब वहां पर अब बोलते हैं कि बहुत अनेक अनेक कथाओं के साथ में कहते हैं कि अब भगवान ने तैयारी कर ली है और तैयारी करके उन्होंने विचार किया कि अब वहां पर जाना चाहिए। और उस समय वहां पर सभी देवताओं आए और उन्होंने कहा कि भगवान आप जिस कार्य से यहां पर आए थे वो कार्य संपन्न हो गया है और अब आपको यहां से चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने भी उस पर विचार कर लिया है और यहां से अब मैंने सब विचार करके यहां से निकलना है। तो सब संतों ने कहा कि अब आपने सब यहां पर दैत्यों का वध कर लिया है। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो दुर्भिवृत भुवान अवतराद भारम जविष्टम जयन कलिम। बोलते हैं कि आपने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, इस पृथ्वी का भार हल्का किया, आपको यहां से चलना चाहिए। और उसी समय वहां पर एक घटना होती है, कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े ऋषियों को पता लगा कि अब भगवान सुधाम पधारने वाले हैं, इसलिए यहां पर लिखा है विश्वामित्रोसी कनु दुर्वासा भृंगुर। अनेक अनेक ऋषि वहां पर आकर के उन्होंने वहां पर निवास शुरू कर दिया, जो पिंडार क्षेत्र है वहां पर निवास करते, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते। भगवान ने विचार किया कि अब इन्हीं के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। और भगवान के कुल में अनेक अनेक बच्चे लड़के हैं और जो बड़े घर के बच्चे लड़के होते हैं वो थोड़ा सा उच्छृंखल होते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, सब नहीं होते हैं, परंतु यहां पर भगवान की ऐसी माया थी, भगवान ने इस प्रकार का उन पर पर्दा डाल दिया और बच्चे खेलते खेलते सांब बड़ा सुंदर भगवान का पुत्र है। सभी ने कहा कि हम लोग इन महात्माओं की थोड़ी परीक्षा लेते हैं कि इनको कुछ आता है कि नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं परीक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि एक ने साड़ी पहन ली, शाम को साड़ी पहना दिया और उसको घूंघट निकाल दिया और सब सदस्यों के पास में गए कि हमारी जो बहन है ये बड़ी शर्मालु है, इसको बड़ी शर्म आ रही है और ये अभी गर्भवती है, आप बताएं इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। वो तो त्रिगाल ऋषि वहां पर ऋषि लोग थे, उन्होंने कहा कि इनकी बुद्धि विनाश को प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ना इसको पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसमें एक मुसल पैदा होगा, लोहे का मुसल पैदा होगा और ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा। श्राप प्राप्त हुआ, डर गए बच्चे। उन्होंने साड़ी खोली, वहां पर एक लोहे का बड़ा भारी मुसल पर देखा और मुसल दिखा, बड़े चिंतित हुए और आए अपने नगर में। और उन्होंने ये बात और किसी से नहीं कही, उग्रसेन महाराज से कही कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको घिस घिस करके इसको क्या करो, समुद्र में इसको फेंक दो, इसका नाश हो जाएगा, तो मुसल पैदा हुआ है, उसके बाद में कोई विनाश का कारण नहीं है। और ये घटना घटी और घटना घटने के बाद में काफी समय निकल आया, उसके से एक कोण, एक जो कण था जो घिसा नहीं गया था, उसको समुद्र में फेंक दिया गया। और उसी समय वो सब भूल गए, वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के अपने जो भगवान के माता पिता है उनको उपदेश देने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने एक कथा लंबी कही, यहाँ पर जो एक राजा निमि थे उनकी यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा था, वहां 9 योगेश्वर आए और 9 योगेश्वरों ने विविध प्रकार से भगवान उनको अपने उनके उनको उपदेश दिया था। इस प्रकार का बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रसंग आया है। और
फिर ब्रह्मा जी आते हैं कि भगवान अब आप आपका जो संपूर्ण कार्य था भूर भारावतारण पूरा विज्ञापिता प्रभो, कहते हैं कि आपने यहाँ पर आकर के धर्म की पुनर्स्थापना की। धर्मस्य स्थापिता सस्तु सत्य संधि नवैत्वया, बोलते आपने धर्म की पुनर्स्थापना की है इसलिए आप अब यहाँ से आप चले। आपको यहाँ अवतरित हुए 125 वर्ष हो चुके हैं। ये ब्रह्मा जी स्मरण दिला रहे हैं, कहा कि आप अब वहां पर भी आपका यहाँ का कार्य हुआ और वहां पर आप चले, और भगवान ने कहा कि ठीक है हम वहां से चलते हैं। परंतु उद्धव जी को जो पता लगा तो उद्धव जी पास में आए और उद्धव जी ने कहा कि भगवान आप जा रहे हैं, तो उद्धव जी को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो भगवत भक्ति करते रहो। और जैसे वहां पर कहा उन्होंने एक कथा सुनाई, बोलते हैं कि एक बार दत्तात्रेय राजा के पास आए थे और उन्होंने राजा को उपदेश दिया था, हमने उन्होंने 24 गुरु किए थे, 24 गुरुओं का उपदेश करते हुए उनको उपदेश सुनाया और उसके बाद में कहे कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो आपको अब यहां से सर्वप्रथम तो उन्होंने भगवान ने कहा कि अगर अपने को अपना कल्याण करना है प्रायेण मनुजा लोके लोको तत्व विचारणा, बोलते हैं कि उस समय अपने को अपना ही अपने दृष्टि से अपना कल्याण कैसे हो। आत्मनो गुरुरात्मैव, भगवान ने बड़ा सुंदर यहां पर एक संवाद किया है, यहां पर उपदेश दिया है, अपना आत्मा ही अपना गुरु है, उसका आप ठीक से उसको हमारा कल्याण किसमें है हमारा भला किसमें है वो आप ही विचार कर सकते हैं, इसलिए आत्मा ही आपका अपना गुरु है। अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, अनेक प्रकार की कृपा होती है, कहते हैं कि ईश्वर कृपा होती है अपने पर, हम सब पर ईश्वर कृपा है, ईश्वर ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है, बनाया ना मनुष्य, किसकी कृपा है ये ईश्वर, हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं परंतु किसकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है, हम मनुष्य बने हुए हैं। फिर आप पर शास्त्र कृपा होती है ना, ये भी एक कृपा है, जब आप पर शास्त्र कृपा होती है तो आप कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं शास्त्र पढ़ते हैं शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में गुरु कृपा भी कभी हो जाती है। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक जो आपके व्यवहारिक गुरु होते हैं और एक आपको परमार्थिक गुरु होते हैं, दोनों गुरु आपको मिलते हैं, शास्त्र कृपा है गुरु कृपा है। और जब तक आप पर आत्म कृपा नहीं होगी, बोर्ड तो बहुत लगाए होंगे आमंत्रण बहुत को भेजे होंगे परंतु सब तो यहां नहीं आ पाए, जिसने निश्चय किया होगा चाहे वर्षा है चाहे कुछ भी है ट्रैफिक है हमको श्रवण करने के लिए जाना है, तो आपने उसको निश्चय किया होगा तभी तो आप यहां पर आए हैं, ऐसी आत्म कृपा होनी चाहिए। और इस प्रकार अनेक प्रकार का उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि हमने अनेक गुरुओं को धारण किया था, वो जो वहां पर जो अवधूत थे दत्तात्रेय जी ने अनेक प्रकार की उस समय जो बात कही थी, और भगवान अंत में कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर के कोई जगत में साधन मुझे प्राप्त करने का है ही नहीं, यहां पर ऐसा लिखा है। यथा उन्धे सत्संग सर्वसंगा पहो द्वाम, बोलते हैं कि जो अनेक है अनेक प्रकार के सांख्य कर्म है योग है ये है वो है अनेक कर्म है, परंतु सत्संग उसके अंदर सर्वोत्तम कर्म है, इसलिए तुम हमारी सत्संग के द्वारा हमारा ध्यान करो और यहां से तुम अब सीधे सीधे बद्रीनाथ जाओ। और भगवान का आदेश हुआ कि हे यदुकुल में भगवान ने विचार किया कि अब यहां से हम लोगों को अब यहां पर से जाना चाहिए, भगवान ने विचार किया था जाने के लिए, और उसी समय भगवान ने सबको आदेश दिया कि हम लोग अब सातवें दिन यहां पर बहुत विकराल परिस्थिति पैदा होने वाली है, यहां पर अनिष्ट आने वाला है, इसलिए हम लोग यहां से भूत भावन भगवान शिव जी की अर्चना करने के लिए यहाँ से प्रभास क्षेत्र में चले, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, भगवान सौराष्ट्र में सोमनाथ रूप से बैठे हुए, सोम भगवान वहां पर बैठे हुए है। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को वरदान देने के लिए भगवान वहां पर प्रकट हुए थे, इसलिए वहां पर सोमनाथ कहा जाता है। वहां पर चलना चाहिए और वहां पर सबको कहा कि यहां से सब लोग वहां पर चलो और सोमनाथ पहुंच जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। भगवान का पूजन करने के बाद में भगवान ने उस सबकी बुद्धि हर ली थी और वहां पर उन लोगों ने मदिरा पान किया और मदिरा पान किया बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सामने हमारा मित्र है कि शत्रु है ये उनके समझ में आ नहीं रहा था और उसमें वहां पर एक घास आई हुई थी जो मूसल था ना, मूसल का जो चूरा पड़ा हुआ था उसकी घास पैदा हुई थी, उसका नाम एरक घास था वहां पर। उसको सब लोगों ने उसको तोड़ा और जैसे तोड़ा जैसे वज्र के समान हो गया और एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते वहां पर देखते देखते यदुकुल का लगभग लगभग संहार हो गया। बलराम जी देख रहे थे सब दृश्य, उन्होंने समाधि लगाई और समाधि में उन्होंने अपने आप को साक्षात अपने स्वयं को आत्मा में उन्होंने विलीन कर लिया और ये सब के सब भगवान देख रहे थे दूर से। भगवान ने विचार किया कि अपने को भी चलना चाहिए, सब लोग चले गए हैं, हमने यदुकुल का भी संहार किया। भगवान एकांत में बैठे हुए हैं और एकांत में बैठे हैं, उसी समय एक बहेलिया जो उस मुसल का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो एक मछली निकल गई थी, वो किसी ने मछली को मारा था और उससे उसने बाण बनाया था। वो बाण को लेकर के वो बहेलिया ने विचार किया कि कोई हिरण बैठा हुआ है और उसने अनुसंधान किया और वहां पर बाण आकर के लगा। उसने सोचा कि शायद अब हमारा शिकार हो गया, परंतु जैसे ही पास में आया तो वहां पर भगवान बैठे हैं और उनके चरणों में से वहां पर रक्त बह रहा है। वो बहेलिया बहुत दुखी हुआ, उसने कहा कि भगवान मेरे से बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा कि मेरे ही अंतकरण, मेरे से ही, मैंने ही तुमको ये प्रेरणा दी थी, मेरे ही प्रेरणा से ये कार्य हुआ है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुमको नर की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने उसको उपदेश दिया और वहां से सुधाम प्रस्थान करते हैं और यहां पर भगवान की अनेक अनेक कथा कहते हुए हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तुम, मैं परीक्षित हूं, मुझे कोई तक्षक काटने आएगा, इस भाव को आप तुम समाप्त कर दो, तो पशुवत भाव है उसको समाप्त कर दो। और उस समय राजा परीक्षित ने विचार किया और उस समय उस परमात्मा में अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ही पूर्ण परब्रह्म हूं, इस प्रकार उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया। और चिंतन करते करते वो जो तक्षक नाम का जो सर्प था वो धीरे धीरे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में जहां पर राजा अब समाधिस्थ हैं और यहां पर लंबी कथा आई है। वो समाधिस्थ राजा है और उन्होंने अब शरीर का कुछ भी हो जाए उसके लिए जब उन्होंने अपने ब्रह्म चिंतन करते करते उस सर्प का भी काम था, उसका कर्तव्य था, क्योंकि ऋषि पुत्र ने उनको श्राप दिया था, इस कारण से उस सर्प को जाना था। वहां पर सर्प आता है, उसको डस लेता है और उसके बाद में जो घटना घटती है, इस प्रकार की ये संपूर्ण कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई और हम लोगों ने यत किंचित उसमें से बहुत छोटा कण रूप से उसको हम लोगों ने सुना और सुनाया। इसके पीछे का कारण संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब लोगों को पता है ये जो संस्था प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन स्वामी श्री प्रेमपुरी ट्रस्ट, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज 59 वर्ष पूर्व वो ब्रह्मलीन हुए थे और उस समय से लेकर के अब तक उनके स्मृति में जो संत होते हैं ना, संत वो संत उनका जब तक जीवन होता है तब तक वो जीवन होते हुए भी कल्याण करते हैं और जीवन नहीं रहते हुए भी वो क्या करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं और उसका जीता जागता प्रमाण है ये प्रेमपुरी आश्रम। और 39 वर्ष से यहां पर अनेक लोग आए, उन्होंने इस परंपरा का निर्वाह किया। ट्रस्ट मंडल है वो आते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, परंतु एक परंपरा पड़ी हुई है और परंपरा में अभिवृद्धि हो रही है। वो परंपरा है दिनों दिन उसमें निखार आता जा रहा है, उसमें श्रोता और वक्ता भी और साथ साथ में जो यहां पर उसकी व्यवस्था करने वाले हैं उनके भी अंदर एक उत्साह आ रहा है कि ये परंपरा चलनी चाहिए। सत्य सनातन धर्म को यथावत रहना चाहिए, उसकी अभिवृद्धि होनी चाहिए और उसके लिए श्रीमद् भागवत माध्यम बना करके हम लोग 7 दिन का यहां पर एक अनुष्ठान करते हैं और उस अनुष्ठान में भिन्न भिन्न विद्वानों को यहां पर बुलाया जाता है। यद्यपि 10 वर्ष पहले यहां पर एक बार अवसर प्राप्त हुआ था कथा करने का और यहां पर एक बार जब जिसको बुलाते हैं दूसरी बार उसको कम बुलाते हैं, परंतु इनको क्या हुआ, क्या पता कि मेरे को कहे कि आपको यहां पर कथा करनी है। और इसके पीछे कोई कारण होता है। यहां के एक अध्यक्ष, यहां के एक मैनेजिंग ट्रस्टी थे मदन लाल डालमिया जी, उनके लिए चर्चा हुई कि उनके लिए अलग से कथा की जाए। तो अलग से कथा करेंगे तो लोग इतने नहीं आएंगे, जो हमारे परंपरा की कथा है तो उसमें इसमें सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार का आयोजन हुआ और कथा कौन करेगा, तो इन्होंने विचार किया होगा कि इस जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, अब इन लोगों ने ऐसे अध्यक्ष को चुना है जो समय कम दे पाता है। फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि आप कथा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि मैंने भी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत उत्साह से, ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जो टीम वर्क, जो समूह का जो काम है, इस बार देखने को मिला और उसकी अगुवाई की हमारे राजेश भाई ने और उनके 4 सहयोगी ऐसे थे उनको हमेशा उनके हाँ में और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे मधुसूदन जी, हमारे प्रकाश भाई, हमारे गिरीश भाई और भी बहुत से लोग इनके साथ में और यहां के जितने लोग हैं उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया और एक कथा का आपने परिणाम देखा। और साथ साथ एक दूसरी बात, मैंने उनको एक बार एक कार्यक्रम यहां पर हुआ था, एक विशेष पूजा हुई थी उसमें स्वामी नित्यानंद जी आए थे, इन लोगों ने देखा था कि, और मुझे प्रकाश भाई ने और राजेश भाई ने कहा कि वो स्वामी जी के वो विद्यार्थी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मैंने कहा उनसे मैं पूछ करके बताऊंगा। उनको मैंने संदेश भेजा और उन्होंने कहा कि हम आपको कितने विद्यार्थी चाहिए, तो हमने कहा कि इतने चाहिए, उन्होंने कहा कि हम आपको विद्यार्थी भेज देंगे। और इस समय ये जो ऋषि कुमार यहां पर आए हुए हैं, इन्होंने जो इस समय वातावरण को यहां पर जो आपको यहां पर बनाया है, साक्षात आप वैकुंठ में बैठ करके भगवान को देखते हो, ऐसा यहां पर वातावरण उत्पन्न हुआ है। रही बात उनकी, ये सब वातावरण हुआ। अब कथा कहते 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 अब मैं कितनी, जब कथा कहता हूं तो मैं कभी कभी देखता हूं एक आधा घंटा हो जाता है तो सामने कोई कोई थोड़ा सा आंख बंद करने लगते हैं, तो उनको जगाना होता है और उनको उत्साहित करना होता है। तो हमारे विमल भाई हमारे कथा में हमेशा रहते हैं, विमल भाई मेहता, हमारा गांव ना नजदीक ना छिया, अमरेली थी थोड़ा दूर लिलिया गांव से, इमने जन्मभूमि छे, अत्यारे अमरेली में रहे छे। ये अमरेली से वो विमल भाई, उनके सहयोगी वैकुंठ भाई, इनका नाम से प्रशांत
रोनक,
रोनक भाई,
रोनक
नहीं पाचर कौन,
राजू,
राजू भाई, ये हमेशा हमारे साथ हुए। और ये भी सब हो जाए यहां पर आयोजन हो, सब कुछ हो। और जैसे रुक्मिणी विवाह में कल जैसा उत्साह देखा, अगर आप सब न होते ये कार्यक्रम सफल होता क्या? नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सब श्रोताओं का है। दो दिन घनघोर वर्षा रही, फिर भी हमें लगा नहीं उसका यहां पर कोई असर हुआ है। आप सब लोग किसी ना किसी प्रकार से यहां पर आते गए। अब सचमुच ये कार्यक्रम बहुत आनंद पूर्वक संपन्न हो रहा है और ऐसा ही ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। आने वाले साल में भी बहुत अच्छे विद्वान यहां पर आने वाले हैं और ये प्रतिवर्ष ऐसा ये कार्यक्रम यहां पर होता है। मैं समझता हूं कि ऐसा एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा हमारी जो परंपरा है, हमारा जो अनादिकाल से चला आ रहा ऋषि परंपरा है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, हमारी भगवता और भगवान के भक्त और भगवान की जो परंपरा है, ये चलती रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये कथा यहां पर चल रही है, ऐसी परंपरा चल रही है। अनेक अनेक लोगों का यहां पर सहयोग और विशेष रूप से माध्यम मुझे बनाया था, इसलिए अनेक नए यजमान बने हैं। और केवल इतना ही नहीं, यहां के जो कर्मचारी है उन्होंने अपने ओर से एक पोथी रखी, ऐसा मैंने यहां पर देखा। और आप यहां पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं इससे कहीं अधिक लोग उसको पढ़ रहे हैं। जन्मभूमि के माध्यम से उसको अनेक लोग उसको पढ़ रहे होंगे। और मैं रोज दो कथा करता था, एक मालिनी बहन के साथ में बैठ करके नीचे उनको लिखा था कि आज शुभ थवानू छे, अने मालिनी बहन उसको लिखती थी, और दूसरी एक बहन सुबह यहां से कानन बहन, इन्होंने उसको लेखन किया और हमारे राजेश भाई उसको समय पर और फोटो के सहित जन्मभूमि में प्रतिदिन वो सार छपता रहा और अभी भी और दो दिन छपेगा वो। तो ऐसी संपूर्ण रूप से ये कथा सफल रही और भगवत कृपा से, हमारे गणेश जी की कृपा से कोई विघ्न नहीं आया, भगवान शिव की कृपा से कोई कष्ट नहीं आया और भगवती की कृपा से सब स्वस्थ और प्रसन्न रहे। तो अब कथा को हम लोग यहां पर विराम देने से पहले एक श्लोक का गान यहां पर होता है। उस श्लोक के गान में जो हमारे यहां के व्यवस्थापक हैं, जो हमारे जो भी यहां पर ट्रस्टी मंडल है, और एक विशेष रूप से आप लोगों ने जो यहां पर पूजन किया, आप लोगों ने यहां पर जो आप जो यजमान बने हैं उन्होंने अपने अपने पितरों के लिए अपने लिए जो पूजन किया, उसके हमारे आचार्य भास्कर जी, पंडित भास्कर जी, उनका बहुत सुंदर योगदान है इस सुंदर वातावरण को, इस सात्विक वातावरण को बनाने में। तो अब हम लोग कथा को विराम इसलिए दे रहे हैं कि पुनः कथा हो जाए। कथा को कोई विश्राम नहीं होता है, एक पड़ाव होता है उसको विश्राम होता है, उसकी संपूर्ण होती नहीं है। और पिछली कथा में मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी माइक की, पिछली कथा में, इस बार नहीं। इस बार हमारे दो, ये जो दिनकर और उनके साथ हमारे राजेंद्र दोनों ने बैठ करके उसका संचालन किया, इसलिए मेरा गला ज्यों की त्यों रहा। नहीं तो कथाकार का दूसरे लोगों के गले बैठ गए थे, प्रकाश भाई का गला बैठ गया था, हमारे राजेश भाई का गला बैठ गया था, हमने कहा शायद ये भी कथा कर रहे होंगे कहीं ना कहीं बिना माइक के, परंतु ये माइक भी बढ़िया रहा और हम लोगों ने कथा बड़े सुंदरता से हम लोग उसको श्रवण किया। और अब हम लोग उस मंत्र का पाठ करते हुए हम लोग यहां पर इस कथा को यहां से विराम देते हैं, और इसके बाद में जो हमारे जो भी यहां का संचालक मंडल है वो आपको यहां से कुछ संदेश देना है वो देंगे, और मैं और हमारे जो विमल भाई है उनके लोग हैं वो भी यहाँ से जाने की उनको भी लगी हुई कि अन्य कार्यक्रम है, वो भी यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस कथा को संक्षेप में, तो हम भगवान के नाम से इस कथा को कहते हैं कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनंच यद भवित तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद पर। और परमात्मा का नाम लेने से तो वो सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो अगर कुछ हो भी है भूल वो भी समाप्त होती है, तो भगवान का संस्मरण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
आपको केवल यहाँ से विराम हुआ है, अभी बहुत सा कार्य शेष है, आरती करके ही आप लोग जाना। और दूसरी एक बात कि एक सुंदर एक ये जो कैसा हमारा ये वंश वृक्ष है, सृष्टि का क्रम आदि है, ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी से हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई है, उसका एक बैनर नीचे लगा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखना। और अब आप जो यहाँ के संचालक लोग हैं, अपना माइक संभालो और अपना कार्य करो।
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। पधारे हुए भूदेवों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण प्रणाम। स्वामी जी के श्रीमुख से ज्ञानामृत से ओतप्रोत रसमयी कथा का हमने आस्वादन किया। कथा में इतना मिठास था, उसका स्वाद अभी तक हमारे जीवा पर है और उसका आनंद की अनुभूति अभी भी हम कर रहे हैं। हम सब पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बिना उनकी कृपा के इस ढंग का आयोजन भागवत कथा जो दुर्लभ है, देवताओं को भी वो कथा प्राप्त नहीं हो रही है। सुखदेव जी के पास देवता गए थे, कहा था कि अमृत कलश आप ले लो, कथा हमको दे दो। सुखदेव जी ने क्या कहा कि कथा बिकाऊ नहीं है, इसके कथा क्या पात्र नहीं है, कथा के लिए पात्रता योग्यता जरूरी है। ये हमारा परम सौभाग्य है, तभी इस कथा का हम परम पूज्य स्वामी जी श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। इस कथा को सुनकर हम अपने आप को धन्य धन्य कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। नंद महोत्सव महारास का हमने अवलोकन किया, जिन्होंने जो इस समय उस अवसर पर थे, आनंद की वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात वृंदावन और ब्रजभूमि हमारे प्रेमपुरी आश्रम में आ गए हैं। स्वामी जी ने माखन मिश्री और ब्रज की रज का हमें स्वाद दिलवाया। हमने कथा के माध्यम से परमानंद की अनुभूति की और ये परमानंद हमेशा बना रहे, यह ईश्वर से प्रार्थना है। इस संसार में जन्म मृत्यु का कालचक्र चलता रहता है, लोग आते हैं रहते हैं जाते हैं। यह संसार भगवान ने कहा है दुखालय है, अनित्य है, अशाश्वत है। जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन कामनाएं समाप्त नहीं होती। संसार असार है, सार केवल परमात्मा है। मन की वृत्ति परमात्मा में लगाएं तो उपासना है, मन की वृत्ति संसार में लगाएं तो वासना है। संत वाणी है, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। संत तुलसीदास जी कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। भगवान शंकर मां उमा को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पर। हमें इस कथा के माध्यम से एक निर्णय मन में करना है, एक संकल्प करना है कि हमें केवल भगवान का आश्रय लेना है। केवल आश्रय भगवान ही दे सकते हैं, हमें भगवान का आश्रय लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है। स्वामी जी ने कहा कि जीवन में सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। जो भाई बहन यहाँ नित्य सत्संग में आते हैं वो अनुभव करते हैं कि प्रेमपुरी में आने के बाद उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, उनकी जीवन की दिशा कहाँ बदल गई। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो भाई बहन जो भागवत की यहाँ यजमान है, जो यहाँ पर नहीं आते सत्संग में, उनसे प्रार्थना है कृपया आप यहाँ सत्संग में आकर देखिए, आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, इनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपनी भावना के प्रतीक के रूप में, हमारी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में एक स्मृति चिन्ह हम स्वामी जी के सही चरणों में उनकी आज्ञा से समर्पित करना चाहते हैं और स्वामी जी से प्रार्थना है कृपया उसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। आपसे प्रार्थना है हम स्वामी जी को चरणों में समर्पित करेंगे, आप जोरदार तालियों से स्वामी जी का दर्शन करेंगे।
ज्यादा समय खराब न करते हुए सिर्फ दो ही मिनट लूंगा। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज के चरणों में वंदन। परम पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। जीवन के सर्वश्रेष्ठ 7 दिन मैंने बिताए, आप लोगों ने बिताए। स्वामी जी आप हमारे सबके जो भाव है वो मैं सिर्फ एक ही मिनट में कहूंगा कि जैसे महाराज हुआ था तो हर गोपी को लगता था कि स्वामी जी जो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है, यहां बैठे सभी श्रोता को लगता है कि स्वामी जी मुझे कदा सुना रहे। अब इस कथा का आयोजन हमारे श्री मदन लाल जी डालमिया जी न थे, तभी स्वामी जी का अपना ही प्रस्ताव था कि मैं श्री डालमिया जी के प्रति भाव व्यक्त करने मैं कथा करूंगा, और हमारे ट्रस्ट मंडल ने ये मौका ले लिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ ले। अभी कई लोग आए कि हमारे पोथी की है, लेकिन ये जो इतना सीमित है इसके लिए 71 पोथी मेरे ख्याल से पहले भी हुई थी, लेकिन इतना सुंदर आयोजन 3rd फ्लोर पे एक साथ प्रथम बार हुआ। स्वामी जी के तो कई परिचय हैं, 15 आश्रम हैं, हमारे भी अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं इतना सब न करके सिर्फ एक ज वर्ड कहूंगा कि स्वामी जी तमे अमारा छो, अने अमारा रहेजो, अने आवी कृपा करता रहेजो। यही शब्द से आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टैंडिंग ओवेशन के स्वामी जी का ये कर देवे। सो जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। अब बैठ जाइए प्लीज। बस ज्यादा समय न लेते, कल की कुछ सूचनाएं हैं तो मेरे जो कलीग हैं और जो आभार व्यक्त करने का है, तो अभी हर एक का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्वामी श्री नित्यानंद जी का मैं खास उल्लेख करूंगा, और जिन्होंने अपने आश्रम के 71 बटुकों को यहां भेजा है, तो जिससे ये वातावरण इतना शुद्ध हो गया कि जैसे गंगा का पवित्र जल और हरिद्वार नैमिषारण्य ही हो गया। ये अभी इस आयोजन में एक आदमी का काम नहीं होता है, तो जो हमारी टीम वर्क है जिसका मैं सभी का नाम उल्लेख करूंगा, तो प्रथम सभी का नाम उल्लेख करना कोई रह गया वो तो क्षमा याचना। पहले हमारे श्री गिरीश भाई, श्री प्रकाश भाई, श्री मधुसूदन जी जिनका साथ था इस, लेकिन उनके बिहाफ पे मैं आप सभी का आभार मानता हूं। जो भी कार्यकर्ता बंद है, तो जो भी कार्यकर्ता है इंडिविजुअल नाम लेके सबको मैं आपका प्रेमपुरी आश्रम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारे जो अमरेली से पधारे हुए हैं अभी निकल गए हैं, लेकिन स्वामी जी ने मेरा काम सरल कर दिया, पहले ही उनका आभार मान लिया था। और ये जो बटुक बन है जिन्होंने ये सुंदर किया है, और सबसे श्री कुंदन भाई व्यास जो जन्मभूमि के एडिटर हैं, मैंने उनको कहा कि भाई थोड़ी प्रसिद्धि देंगी, तो बोले प्रेमपुरी का जो भी कार्य है सिर्फ ये नहीं आप दो। वो इतने प्रसन्न हुए कि जो अपने जो स्वामी जी, जो स्वामी जी ने अभी उल्लेख किया ना कि बे वार कथा करते तो स्वामी जी क्षमा चाहू छा, पर एनाथी घना लोगों ने लाभ थयो छे। और अभी हमारे श्री गिरीश भाई आपको अनाउंस करेंगे कि भक्ति सागर में भी होगा वगैरह वगैरह। और अंत में श्रोता न होते तो क्या होता, तो आप शिष्टबद्ध श्रोता हैं। जो टेंशन जो कार्यकर्ता को होता है ना कि कहां बिठावे, और स्वामी जी मने बहु आनंद आवे छे जयरे मैंने खुर्शी गोतवी पड़े छे कि क्या बेसाड़ू कोई ने। एवं सुंदर कार्यक्रम थयो छे, आप सौनो पण आभार, बहुत शांति, जय श्री कृष्ण। अभी मैं गिरीश भाई और प्रकाश भाई को कहूंगा दो शब्द कहें।
स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज ने चरणों वंदन, अध्यक्ष स्वामी मंचस्व स्वामी श्री विश्वेश्वरी महाराज चरणों में वंदन। गुजराती स्वामी जी ने मारू हिंदी खबर छे। स्वामी थोड़ी थोड़ी हूं मेहनत करू छू तमने। स्वामी जी कथा में एक वस्तु कीधेली कि आपने कृष्ण भगवान बता देवी देवताओ बता माननीय छे, पर कृष्ण भगवान विशेष रूपे आपने एटले गमे छे कारण कि ए आपड़ा जेवाज लागे छे बधी रीते। हूं विचारतो तो गईकाले जयरे आ संवाद पूरो थयो पछी जयरे मारा मां आदत छे मनन करवानी, तो मैं स्वामीजी ने कृष्ण भगवान साथे सरकाव्या। स्वामीजी જ્યારે પણ અમે ટ્રસ્ટી તરીકે જઈએ ત્યારે ટ્રસ્ટીની જેમ વાત કરે, એટલે કે અમે એમની સાથે સરખા જ છીએ। જ્યારે હું એમની પાસે શિષ્ય તરીકે જાઉં ત્યારે મારી સાથે એવી રીતે વાત કરે, જ્યારે હું કદાચ થોડો નજીક આવીને સખા તરીકે વાત કરું તો મને સખા તરીકે કરે। આવા આપણા સ્વામીજી જેને આપણને 8 દિવસ એટલું બધું આનંદ કર્યા સ્વામીજી, કે અનુભવની જ વાત છે, શબ્દથી વર્ણન કરી શકાય નથી। અમે ગદગદ છીએ સ્વામીજી તમારા માટે, અને વિશ કે તમે અનેક વાર આવી રીતે અમારી પાસે આવો સ્વામીજી। આ વખતે ઘણું બધું નવું થયું છે, એમાં થોડું ઉલ્લેખનીય છે જે ઘણી બધી મારા ટ્રસ્ટીભાઈ રાજેશ અને સ્વામીજીએ પણ કહી દીધું, પણ એક ઉલ્લેખનીય 3 વસ્તુ કે જેને હિસાબે આપણી આ કથા બહુ જ એક લેવલથી ઉપર આવી એવું મને લાગે છે પર્સનલી। એક, સ્વામીજીની પધરામણી એક બહુ વિશેષ વાત છે, 10 વર્ષ પછી સ્વામીજીની પધરામણી થઈ। બીજું, જન્મભૂમિ આપણને ચેનલ પાર્ટનર તરીકે વિશેષ રૂપે આપણને જે યોગદાન આપ્યો એના માટે ખાસ અમે કુંદનભાઈના આભારી છીએ। સ્વામી શ્રી નિત્યાનંદજી સ્વામીજી જે અમે પ્રત્યક્ષ મળ્યા સ્વામીજીની આજ્ઞાથી, અને એમણે તરત સહર્ષ સ્વીકારી લીધું। પહેલી વાર ભાગવત સપ્તાહની અંદર આવા ભૂદેવ આવી અને બ્રાહ્મણો છોકરાઓ શુદ્ધ સ્વરથી ભાગવતના શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ સાંભળવા લાયક એક વિના હતી, એ પહેલી વાર થયું આપણે ત્યાં, એના માટે અમે તમારો બહુ આભાર માનીએ। અમે ખાલી આમ આપ લોકો કા આભાર ઇસીલે નહીં માનતે હૈ કે આપ શુદ્ધ વિચાર કે દ્વારા ઓર શુદ્ધ શ્લોક હમકો સુનાતે થે, મગર હમારે સ્વામીજી કો આપ આનંદિત કરતે થે, એ હમારા લી બડી પ્રસન્નતા કી બાત થી। આખી વર્કની અંદર રાજેશનો જે પ્રયાસ જે હતો ને વન ટીમ વર્ક કરવાનો, દેટ વોઝ એક્સેલન્ટ, જે આ પહેલી વાર થઈ રહ્યું છે જેણે બધાને એક કરી અને ટીમ વર્ક તરીકે કર્યું, એને માટે રાજેશ યુ રિક્વાયર અ ક્રુડોઝ, ફેન્ટાસ્ટિક વર્ક। અને આઈ વિશ કે આવું જ કામ આપણે ટીમવર્ક તરીકે કરીએ, આમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં પણ ટીમવર્ક હોવી જોઈએ, દેટ ઇઝ વોટ આઈ થિંક ઇઝ વેરી ગુડ। અને આખા ભાગવત સપ્તાહમાં સ્વામીજી જે વિશેષ રૂપે બેક પાછળ રહીને જે લોકોએ કામ કર્યું છે, સ્ટાફ મેનેજર, એ લોકોને ખાસ વિશેષ લાગે છે કે પહેલી વાર આટલો આનંદિત એ લોકોએ કર્યું છે. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ થઈ રહ્યું છે ભાગવત સપ્તાહમાં. સ્વામીજી આ સીમાચિહ્ન અને સ્મૃતિચિહ્ન એટલે માટે આવ્યું છે કે તમે વારે વાર અમને યાદ કરીને વારે વારે ભાગવત સપ્તાહમાં આવો. હરિઓમ તત્સત. હરિઓમ
હરિઓમ. આપ સબકી તરફ સે પ્રેમપુરીજી મહારાજ કો, પૂજ્ય મહારાજ જી કો, જો ભાગવતજી યહાં વિરાજમાન હૈ, જિસકી અભી અભી હમ લોગ વિદા કરને કે લિયે દ્વારકાધીશ જાયેંગે, ઉનકો સબકો આપ સબકી તરફ સે વંદન કરતે હુએ, બહોત હી ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક યહ ભાગવત હુઆ. મહારાજ જી કો મેને પૂછા, મહારાજ જી પતા નહીં ક્યું ક્યા બાત હૈ, ઇસ સમય ઇતની પ્રસન્નતા હરેક શ્રોતા મેં, હરેક હૃદય મેં, સ્ટાફ મેમ્બર મેં, ઇસકા ક્યા કારણ હૈ. યહ એક સુંદર ભાગવત જો સાલો સાલ હમ સુનતે આયે હૈ, ઓર ઇસ સમય તો મહારાજ જીને એક વાક્ય કહા, બહોત પ્યારા લગા, કે તમે બધા મારા આત્મીય છો, और उस आत्मीयता से यह पूरी कथा यहां का आयोजन हुआ. महाराज जी जैसे बताया गया आपसे, हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं. प्रकाश से मैं कहना चाहूंगा कि महाराज जी बीच में तो आते ही जाते हैं, कोई भी अच्छे हम यहां कोई प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई ऐसी भागवत का आयोजन हो, और विशेष करके प्रेमपुरी के भागवत में उनकी उपस्थिति के बिना मेरे ख्याल से जब से वह अध्यक्ष है तब तक आज हुई नहीं, उनके पहले आशीर्वाद से ही शुरुआत होती है. तो महाराज जी आप बराबर पधारते ही है और आप हमारे बीच में हमेशा है. ईश्वर की यह भी कृपा रहेगी, अभी जो मेन जो जाहिरात में करने जा रहा हूं, महाराज जी हमारे संस्था के अध्यक्ष ट्रस्टी भी है, मार्गदर्शन भी है, और अभी कल प्रातः 7:30 से 9:30 हम लोग सब पधारेंगे, क्योंकि तो जो यहां है अगर पूरा पुण्य का फल लेना है तो कल प्रातः 7:30 से 9:30 आना बहुत ही जरूरी है, तभी संतों के दर्शन, एक मिनी कुंभ आपको देखने को मिलेगा. हमारे संस्था के ट्रस्टी एवं जैसे प्रेमपुरी जी महाराज पंचम पीठाधीश्वर थे, ऐसे एकादशवें कैलाश पीठाधीश्वर दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज यहां पे रहेंगे, और कई संत के दर्शन यहां होंगे 7:30 से 9:30 तत्पश्चात कई हम लोग हवन में, हवन ऊपर बहुत सुंदर इससे व्यवस्था कर दी गई, वो भी होगा, और उसके पश्चात भंडारा होगा जिसमें कई संत लोग विराजेंगे, उसके हमको दर्शन होंगे 11 बजे के करीब, और तत्पश्चात हम लोग प्रसाद लेंगे. इसके बाद 9 तारीख से जो कैलाश पीठाधीश्वर दिव्यानंद जी महाराज है, उनके द्वारा गीता, श्रीमद भगवद गीता ज्ञान यज्ञ इस विषय पर 9 से 31 तारीख प्रातः 7:30 से 9:30 जो महाराज जी ने बताया, सत्संग और स्वाध्याय और सायं प्रवचन, वो तीन का संगम देखने को मिलेगा 7:30 से 9:30 प्रातः एवं सायं 5:30 से 7:30. यह सुंदर जो प्रवचन धारा रहेगी महाराज जी द्वारा, दिव्यानंद जी महाराज द्वारा अद्भुत है, वो भी हमारे संस्था के ट्रस्टी है. जनवरी महीने में भी साधना सदन और हमारे संस्था के ट्रस्टी विश्वात्मानंद गुरु जी महाराज वह रहेंगे, पूरे महीने तक उनका भी प्रवचन एवं स्वाध्याय रहेगा. फरवरी में भी हमारे ट्रस्टी मोहनानंद गिरी जी महाराज वह रहेंगे पूरे महीने तक. तो यह तीनों महीनों एक समय जुड़ जाओ हमारे से, जो झुंझुनवाला जी ने बताया कि सत्संग स्वाध्याय यह यहां का मूल है, जो महाराज जी भी रोज प्रवचन में बताते हैं. तो आपसे विनंती है कि आप यहां जुड़ जाओ, सुबह 7:30 से लेकर जो भी यह प्रवचन धारा चलती है तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि यह मूल है अपना, और प्रेमपुरी की यह जो पूरी धारा चल रही है उसमें पूरा महाराज जी का मार्गदर्शन है और यह और सालों साल तक ये तो चलता है, तो खाली तीन ही महीने का मैंने आपको दिया विवरण, तो आप सभी पधारें और इसका आनंद लें। कल प्रातः 7:30 बजे हम फिर से मिलेंगे। राजेश कुछ जाहिरात करना चाहता हूँ, मैं चलता हूँ, प्रकाश आप भी आओ, तो हम तीनों खड़े रहे और बाद में अच्छा लगेगा महाराज जी को, आप भी आइए।
महाराज जी, मैंने सुना है कि संत कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ देते ही जा रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि आप कथा तो करते ही रहेंगे, लेकिन हम 10 साल के बाद 70वें साल की जब कथा होए तो आपसे ही सुने और यहां बैठा हुआ हर श्रोता हाजिर रहे, और एक छोटा हाजिर रहे और कुर्सी ना मिले तो जमीन पर बैठने की सक्षमता हो, इतना आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्ण।
और एक उसमें बात भी हो जाए कि भक्ति सागर जो यहाँ पे अभी हमारे सामने है, जो चैनल पे भक्ति सागर चैनल 2, उस पर उसका प्रसारण 18 तारीख से शाम को दोपहर को 3 से 6 के दरमियान हमें प्राप्त होगा। वह जियो टीवी उसमें भी आएगा, बाद में यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। अभी अभी जो यहाँ दूसरी एक चैनल चल रही है यूट्यूब पर, वो संन्यास आश्रम आप टाइप करके जाएंगे तो वो भी आपको प्राप्त है। और 18 दिसंबर से 3 से 6 तक भक्ति सागर चैनल, अनिरुद्ध भाई और उनके सबके हम आभारी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर कवरेज ये किया है और संन्यास आश्रम से भी यहाँ कवरेज मिल रही है हमें, तो इन सबका हम धन्यवाद करते हैं और आप सबका फिर से हम अभिनंदन करते हुए विराम लेते हैं। अब आरती होगी, एक अनाउंसमेंट हमारे निर्जा जी करेंगी।
परम पूज्य स्वामी श्री के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित मैं ट्रस्टीगण से अनुरोध करूंगी, प्लीज आरती के लिए आगे आए और बाकी सब यजमान अपने स्थान पर ही आरती करेंगे, और आरती के बाद हम पोथी यात्रा के लिए द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, पोथी पधरावनी होगी, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे यहाँ और प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यहाँ जो कलश रखे हैं, कलश के जो नारियल हैं, ये भी आप अपने साथ प्रसाद स्वरूप ले जा सकते हैं, और अगर आपको वहां पर पोथी भी ले जानी है तो पोथी भी अपने साथ ले जाएंगे।
को बाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से तारती, अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला, ज्योत जगाने वाला, अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, ज्योत जगाने वाला, हरि आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती,
ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुंदर दुखहरणी मधुसूदन की है
आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती,
ये मधुर बोल जग पंच कोल सन मार्ग बनाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला,
हे मधुर बोल हे पंच बोल जन्माग दिखाने वाला विष्णु बनाने वाला
श्री राम यही घनश्यामी महिमा की आरती की
भावियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार
भागवत
भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार
कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सन्दम
कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्ण पातो जल संस्थिरेण प्रदीप्तवासा सांगतेन निराजलं जयगुरु निराजलं जयगुरु निराजलं जयगुरु
ते श्री कृष्णाय नमः नीराजनम समर्पयामि कर्पूर नीराजनम च समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पेन देवदानां वंदनम आरोग्यार्थयात्मनाभिवंदयेत् करौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिना देवं ध्यायेत् हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणोद्धातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम् स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वाराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्टमराज्यम् महाराजमाधिपत्यमयम् समन्तपर्या ईशात् सार्वभौमः सार्वायुषान्ताधापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराढी तदप्येष श्लोको विगीतोऽमृतः परवेक्षितारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रियैर्विषवे देवा सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दधि प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त भूर्भुवा स्वाहा भगवते श्रीकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकम् नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम तस्माकारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु मे आवाहनम् न जानामि न जानामि तवार्चनम् पूजाम् चैव न जानामि क्षम्यताम् परमेश्वर गतम् पापम् गतम् दुःखम् गतम् दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहम् तव दर्शनात् अत्र धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा समन्वित कृत पूजनार्जनेन श्रीकृष्णः प्रियतान्न मम तत्सत्कृष्णार्पणमस्तु ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव सद्गुरुदेव भगवान की जय कृष्ण कन्हैयालाल की जय भागवत महापुराण की जय श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
रात में आऊं कना डर मोही लागे रात में आऊं कना रात में आऊं कना डर मोही लागे दिल में आऊं तो दिल में आऊं देखे सारे बड़े दूर नगरे दूर नगरे बड़े दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरे कुल नगरे बड़ी दूर नगरे सखी संग आऊं कना लाज मोही लागे सखी संग आऊं कना सखी संग आऊं कना लाज मोही लागे अकेली आऊं तो अकेली आऊं भूलो सारी नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ जी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं कैसे आऊं रे कन्हाई तेरे को फूल नगरे बड़ी दूर नगरे हाँ दूर नगरे बड़ी दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे काना दूर नगरे बड़ी दूर नगरे चलूं कना कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलूं कना कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलूं कना धीरे धीरे चलूं कना कमर मोरी लचके झटपट चलूं तो झटपट चलो चल के दूर नगरी बड़ी दूर नगरी जी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई फिर गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी शर्म मोही लागे अकेली आऊं
नगरे बड़ी दूर नगरे कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरे गोकुल नगरे बड़ी दूर नगरे हाजी मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले भक्तों की तुमने कनारी तुदाह तारी भक्तों की तुमने कनारी तुदाह तारी मेरी विवाह थमा बाके बिहारी मेरी विवाह थमा बाके बिहारी मेरी विवाह थमो बाके बिहारी बिगड़ी बनाई तुमने तो बिगड़ी बनाई तुमने हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हर सांस सांस में तेरा हर सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले पतझड़ हनेरा जीवन बन के बहार आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा सुन ले पुकार का नाम एक बार आजा सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा बेचैन मन के तुम ही हाँ बेचैन मन के तुम ही आराम मुरने वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हर सांस सांस में तेरा हर सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह हुई हो तुम ही, सुबह हुई हो तुम ही, है नाम मुरले वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरले वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरले वाले। हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा, है नाम मुरले वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरले वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरले वाले। हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा, है नाम मुरले वाले मुझे चरणों से लगा रे, मेरे श्याम मुरले वाले मुझे चरणों से लगा रे, मेरे श्याम मुरले वाले मुझे चरणों